হতে পারবো। পূজ্য গুরুদেব শিখে বলছেন আমরা ইসমে 46 নম্বর কাজ বলছিল আখির কা প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ পেজ নম্বর 31 বাত তো ইয়ে চল রই হ্যায় জিনেন্দ্র দেব কি প্রতিমা হ্যায় কি নেই হ্যায় প্রতিমা তো হ্যায় प्रतिमा का कोई निषेध करे तो भी वो यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं स्वीकारता। और जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है इससे मुझे कल्याण हो जाएगा ऐसा अभिप्राय होगा वो भी एक विपरीतता है। दूसरी चर्चा कल चली कि साधक दशा में शुभराग को हे मानते या उपादेय मानते हैं। अशुभ की तो बात नहीं करते, शुभ राग को हे मानते या उपादेय मानते। हे मानते 100%, फिर उसको शुभ राग आता नहीं आता है। हे मानते फिर भी आता है, हे मानने पर भी आता है, क्यों हे मानते तो फिर क्यों आता है। बात तो चल वो चर्चा हो गई, शुभ राग का होना अलग बात है और उसमें हे पना मानना या उपादेय मानना वो अलग बात है। शुभ राग को हे या उपादेय मानना वो श्रद्धा संबंधी है। हे हे रूप और माने उपादेय तो मिथ्या श्रद्धा है, और हे रूप है और हे रूप स्वीकारे तो सम्यक है। लेकिन राग का होना या नहीं होना वो चारित्र के पुरुषार्थ संबंधी है। जितना जितना चारित्र का पुरुषार्थ होगा इतना राग का अभाव होगा। तो ये साधक की दशा है। फिर से इसमें राग ही न हो साधक दशा में तो पूर्ण वितराग हो जाएगा। और साधक दशा में राग है और उसको उपादेय मानेंगे तो बहिरात्मा हो जाएगा। तो साधक की भूमिका में क्या है, राग होने पर भी राग में उपादेय बुद्धि नहीं, इसलिए उसके ज्ञानी के राग को साधक आत्मा के राग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कमजोरी कहते हैं, अस्थिरता का राग कहते हैं। तो ऐसे चारित्र की कमी है पुरुषार्थ में तो ये राग होता है। ये बात चली, जब तक अबंध परिणाम पूर्ण प्रकट नहीं होता है तब तक अपूर्ण दशा में ये परिणाम होते हैं, लेकिन होते हैं इसलिए आदरणीय है ऐसा नहीं। उसके बाद का लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 31 में, निज परमात्म तत्व को ही ग्रहण कर उसमें ही लीन हो। अस्थि में ये बात आई, अभी नास्ति में एक परमाणु मात्र की भी क्या छोड़ दे, आसक्ति, एकत्व तो छोड़ दे, अस्थिरता का राग भी छोड़ दे। और ये त्याग की बात आई, नास्ति की बात आई, तो सामने कोई न कोई अस्तित्व होना ही चाहिए। अस्ति के ग्रहण बिना त्याग की नास्ति नहीं होगी। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक सीढ़ी पे पांव रखते हैं और दूसरा उठाते हैं, करते हैं ना। आगे की सीढ़ी पे क्या रखते हैं, पांव रखते हैं और पीछे की सीढ़ी से पांव। यदि दोनों पांव उठ गए तो गिर जाएंगे, और दोनों पांव सीढ़ी पे रहेंगे तो खड़े रह जाएंगे। तो ये सहज कर्म होता है ना, क्या सहज कर्म, एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग। आगे वाले का पांव रखते माने ग्रहण, और नीचे से पांव उठाते उसका नाम त्याग। ऐसे ही ग्रहण त्याग की ये पद्धति होती है। और इसे और भी विशेषता से देखें तो आश्रव के कितने प्रकार हैं, ये तो दो है, शुभ अशुभ भी है, द्रव्य और भाव आश्रव, पांच प्रकार भी है ना, मिथ्यात्व, अवरक्त, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें अस्थिनाशी कैसा है कि सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व आश्रव का त्याग हुआ, अणुव्रत्ता ग्रहण हुआ तो अविरतपना अव्रतपने का त्याग हुआ, सातवें गुणस्थान में अप्रमद दशा में गए तो प्रमाद का त्याग होता है, बारहवें गुणस्थान में पूर्ण अकसाय होते तो कसाय। तो इस प्रकार क्या पैरेलल चलता है, ग्रहण और त्याग। जितना जितना स्वभाव में स्थिरता होती है इतने प्रकार से रागादि विभावों का त्याग अभाव होता है। तो यह प्रयत्न कैसे होता है, अस्ति नास्ति दोनों है, तो कैसे होता है, अस्ति पूर्वक पुरुषार्थ होता है, तो सहज नास्ति साथ में हो जाता है। जैसे अंधकार हो, कोई रूम में अंधकार हो तो क्या करना, क्या अंधकार निकालना है ना, पहले अंधकार निकालेंगे फिर प्रकाश करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, चलो आप कहते हैं तो पहले प्रकाश करेंगे बाद में अंधकार निकालेंगे, दो काम करना है हमें, एक क्या करना है, प्रकाश करना है और अंधकार का मिटाने का, दो काम करना है ना, नहीं तो कितने काम करना है, अरे एक अस्थि रूप कार्य कर दे और नास्ति रूप स्वयं अपने आप हो जाए। ऐसे ही अस्थि रूप क्या बताते हैं गुरुदेव से, अस्थि रूप क्या बता, नीच परमात्म तत्व। कल तो थोड़ी बात चली थी, क्या फर्क है परमात्म तत्व और परमात्मा, मैं परमात्म तत्व हूं और ऐसे ही परमात्म तत्व का पूर्णतया स्वीकार करके इसमें ही उपयोग जम जाए तो पर्याय में परमात्म दशा प्रकट होती है। परमात्म दशा वो क्या है, मेरा साध्य है और परमात्म तत्व मेरा ध्येय है, और ऐसे ही परमात्म तत्व को ध्येय बनाने से साधक दशा रूप ध्यान मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और वही मोक्ष मार्ग के फल स्वरूप साध्य पूर्ण सिद्ध दशा प्रकट होती है। लेकिन जब तक ध्येय तत्व को स्वीकारेंगे नहीं तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान नहीं होगा तो उसके फल रूप सिद्ध दशा नहीं होती। ध्यान का विषय और ध्यान का फल, ध्यान का विषय कौन है, ध्येय तत्व, और ध्यान का फल क्या है, साध्य तत्व। समझते हैं ना, साध्य तत्व माने पूर्ण सिद्ध दशा, ध्यान उसका विषय कौन है, जिसको यह क्या किया, नीज परमात्म तत्व, परम प्राणामिक भाव, पंचम भाव, एक रूप ध्रुव निष्क्रिय भाव, वो ध्यान का क्या है, विषय, विषय माने उसका अवलंबनभूत तत्व। और ऐसे ही साधना से ध्यान से क्या मिलता है, पूर्ण दशा, जिसको साध्य दशा कहते हैं। तो पहले अपने निज परमात्म तत्व को ग्रहण कर, उसका स्वीकार कर, उसका अनुभव कर, उसमें फिर अनुभव करना है श्रद्धा ज्ञान, फिर उसमें ही, कल फिर से लिया था, अपना शुद्धात्मा है उसका अवलंबन कितनी परिणति लेती है, श्रद्धा की, ज्ञान की और चारित्र की, तीन परिणति अवलंबन लेती है ना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की व्याख्या तत्वा सूत्र में क्या बताई उमा स्वामी ने, सम्यक दर्शन नान चारित्राणी। तो मोक्ष मार्ग में कितनी परिणति होती है, कितनी परिणति होती है, ये मुख्यता से दूसरी गौण है, नहीं तो फिर कितनी है, मोक्ष मार्ग में कितनी परिणति है, अनंत गुणों की परिणति ऐसे निज परमात्म तत्व का अवलंबन लेती है। ये तो अनंत कैसे कह सके, अनंत को कहने के लिए अक्षर भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, तो ये तो मुख्यता आप करके बताए। जैसे सामान्य गुण कितने हैं, सामान्य गुण कितने हैं, छह है ना सामान्य गुण, कितने सामान्य गुण कितने अनंत है कि छह है, नहीं इतना तो ख्याल होता है, कितने सामान्य गुण कितने हैं, छह है कि अनंत है, अनंत में से छह मुख्य है बाकी सब गौण है, नहीं तो क्या है, अनंत है लेकिन सीखने के लिए सिखाने के लिए छह को चयन किया है, बाकी सभी इतना समझ लेना कोई भी गुण हो वो समान रूप से वस्तु में है, कोई भी धर्म हो समान रूप से है, हमें फिर प्रयोजन किसका है वो अलग बात है, सभी गुण जो है सामान्य गुण लो विशेष गुण सभी अपने अपने सामर्थ्य द्रव्य पदार्थ में है, हमारे प्रयोजन के लिए हमें सुख चाहिए तो सुख गुण की मुख्यता करते, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान गुण की मुख्यता करते, और ज्ञान की मुख्यता करके ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा न समझना कि ज्ञायक कहने से कितना गुण आता है इसमें, एक ज्ञान ही आता है, ऐसे भेद मत करना, जैसे शक्कर को हम मुख्यता से कौन से गुण कहेंगे, मीठापना, तो इसका अर्थ ऐसे मत समझना कि शक्कर में एक ही गुण होता है, सफेदपना भी है उनका आकार भी है, ये देखो मुख्य गुण की शैली सामान्य में चलती है जगत में भी चलती है, तो ऐसे ही यहाँ कि हमें एक अपनी शुद्धता के लिए ध्येय तत्व का अवलंबन लेना पड़ा, और ये ध्येय तत्व का अवलंबन लेने से साध्य दशा प्रकट होती है, तो ये अस्थि रूप बात की, अभी नास्ति में एक परमाणु मात्र की भी आसक्ति छोड़ दे, समय सार की 38वीं गाथा में आता ना ऐसा कुछ, एक परमाणु मात्र ऐसा कुछ आता है, सब क्या है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, कभी से नहीं है, आज से नहीं, अनादि से तो बहुत परमाणु इकट्ठे किए अपने, नहीं आज से प्रारंभ करता हूं, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, अरे अनादि से नहीं है, सिंपल नियम, जड़ का चेतन होता नहीं और चेतन का जड़ नहीं होता है, यदि एक दूसरे का स्वामी हो करता हो तो दो की भिन्नता ही नहीं रहेगी, मैं हूं स्वामी हूं लेकिन किसका स्वामी हूं, मेरे अनंत गुण और मेरी अनंत निर्मल पर्याय का मैं स्वामी हूं, वो मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूं, इसे शक्ति है कि नहीं, 46 शक्तियों में आखिर की शक्ति का नाम क्या है, संबंध शक्ति, तो किसके साथ संबंध है, स्व शांत बना, मकान मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूं, और भी कोई वैभव है मेरा, मेरा जो है सो मेरी जाति से भिन्न नहीं होते, जो मेरा स्व है वो मेरे से कभी अलग नहीं होते, स्व स्व का अर्थ भी एक दिया है, स्व का अर्थ माने क्या होता है, अपना बोलते हैं ना, अपना स्व माने गुजराती में पोतानी मालिकीनी चीज, मेरे से मेरा जो है वो मेरे से भिन्न रहता नहीं है, तो मेरा अनंत गुण रूप वो मेरा स्व है और मैं उसका स्वामी हूं, एक परमाणु भी ये मेरा स्व नहीं और मैं उसका स्वामी, और ऐसा अभिप्राय होने पर पूरा विश्व से उपेक्षा वृत्ति होती है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, समय सार की 38 गाथा में बहुत सरस शब्द से शब्द छेले शब्द शुभ अरे छे ने आश्चर्यजनक छे ने, परमाणु मात्र नथी अरे, अरे माने क्या, खेद है या आश्चर्य, 38 गाथामां सेना माटे अरे शब्द सेना माटे वापरो, आश्चर्य के खेद माटे, हाय मारू तो काई निकळ्यु नहीं, आटलू बधुं भेगू कर्युं तुं एमांथी, आचार्य दे के यहां तो ज्ञानी की बात है, जिसको अनुभूति आत्मा की हुई, मिथ्या अभिप्राय में पूरे विश्व को तृष्णा से अपना मानता, और जहां सही आत्मा की अनुभूति हुई तो अनुभव के काल में एक भी परमाणु अपने वेदन में नहीं आया, तो आश्चर्य होता है, कल्पना किसकी थी, पूरा विश्व मेरा है। और सही में क्या निकला, वास्तव में क्या निकला, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। तो ऐसे एक परमाणु की भी आसक्ति छोड़ दे, एकत्वपना छोड़ दे, ममत्व छोड़ दे, अस्थिरता का राग भी छोड़ दे, जिसे निज परमात्मा स्वभाव का आश्रय करना है उसे रजकण को, और तेमज है न माने, और राग के अंश को भी छोड़ देना पड़ेगा। ये जबरदस्ती नहीं है, ये ऐसा तुझे पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। आप कभी इस दो में फर्क समझते, उपदेश और आदेश। देश तो दोनों में है, उपदेश आदेश, फर्क क्या है? इंग्लिश में आप आता है ना बाय ऑर्डर, एक पहले रिक्वेस्ट आता है और यदि नेस स्वीकारता है तो क्या आता है, ऑर्डर आता है। इससे कंपल्सन है, इसमें यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ऐसे ही आचार्य देव करुणा बुद्धि से क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। हम स्वीकारते नहीं है तो क्या आता है, आदेश आता है। आदेश तुझे करना ही पड़ेगा, यदि तुझे ऐसा करना है। देखो शब्द फिर से क्या है, जिसे नीच परमात्मा स्वभाव का आश्रय करना है। मिलता है ना गुजराती पट, लेकिन हिंदी समझ जाते हैं, हिंदी में ही तो सबसे अच्छा है। जिसे तो हूँ खोटू बोलूँ के बधु एवं जावे से, थोड़ा घणो तो हिंदी फर्क पड़ता जैसे नहीं बराबर है। जिसे, जिसे माने किसे, किसकी बात है, मेरी करना है, करना है अगले भव में, अगले भव में तो इसी भव में बुढ़ापा आएगा तभी, अभी अभी तो इतना काम है, इतना बोझा लेके घूमते हैं और बोलते अभी कैसे, अभी संभव है, शायद होगा तो सब निवृत्ति लेके बुढ़ापा आएगा, निवृत्ति लेके तभी नहीं। प्रथम श्रद्धा की इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे अभी इसी समय यही कार्य करने योग्य है। श्रद्धा में जहाँ लचीलापना, लचीला बोलते हैं ना आप, लचीला बोलते हैं ना, जब तक है तब तक पुरुषार्थ जागृत नहीं होने वाला। श्रद्धा में निसंगता आनी चाहिए, दृढ़ता आनी चाहिए। हमारे श्रद्धा अभिप्राय इसमें ही विपरीत बना है तब तक कार्य नहीं। श्रद्धा की दृढ़ता, ज्ञान का विवेक, तो चारित्र में परिणाम। तो ये प्रथम ये नक्की करना क्या है, जिससे, जिसे माने हमें यहाँ क्या पढ़ना है, मुझे, जिसे माने दूसरी बात नहीं, मुझे नीच परमात्मा स्वभाव का। पहली लाइन में इसके लिए कौन सा शब्द दिया था, परमात्मा तत्व, उसके लिए अभी कौन सा शब्द प्रयोग है, परमात्मा स्वभाव। किसके पास है परमात्मा स्वभाव, किसके पास है, सबके पास है। अरे यदि इतना भी स्वीकार है सबके पास है तो किसके प्रति द्वेष करना, किसके प्रति हीनता का भाव करना और अपनी अधिकता। सभी जीव कैसे है, बनारस दास जी ने तो नाटक समय में लिखा है ना, चेतन रूप अनूप अमूरत सीध समान सदा पद। मेरा भी है और सभी का भी है, मैं सिद्ध समान है ऐसा जगत में सभी जीव का। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव जी हमें कौन से शब्द से पुकार रहे थे, भगवान फेमस है ना गुरुदेव का शब्द, ये भगवान आत्मा। गुरुदेव जी हम सबको किस रूप से देखते थे, परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप देखते थे। पर्याय दृष्टि से नहीं, पर्याय दृष्टि से देखने पर तीन प्रकार दिखता है, पर्याय दृष्टि से देखने पर चार गति के जीव दिखते हैं, लेकिन स्वभाव से देखे तो सभी जीव कैसे है, परमात्मा स्वभाव। और यदि स्वभाव में सामर्थ्य में ही परमात्मा पना नहीं है तो प्रकट पर्याय में कहां से आएगा। जिसका जो स्वभाव है उसमें से प्रणमन होता है। जैसे हमें कुछ मीठा खाने का इच्छा हुई, हम कहेंगे मुझे कुछ मीठा खाना है, तो घर में कौन लाके क्या नींबू देंगे या कुछ मिर्च देंगे? क्यों नहीं मुझे मीठा खाना है तो कोई नींबू लाके नहीं देंगे, मिर्च नहीं तो क्या लाके देंगे? स्वीट लाके देंगे, शक्कर लाके देंगे? मैंने शक्कर तो मांगी नहीं है, मैंने शक्कर तो नहीं मांगी ना, मैं तो मीठापना मांगा है, शक्कर नहीं मांगी। वो क्यों लाएंगे शक्कर? क्यों लाएंगे स्वीट? क्यों लाएंगे? दोनों को स्वीकार्य है, देने वाले को भी स्वीकार्य है कि यदि शक्कर है इसका स्वभाव मीठापना है तो स्वाद भी मीठापना आएगा। देने वाले लेने वाले हमें तो सभी विश्वास है, स्वभाव है वहां स्वभाव में पिणमन होगा। तो यहां गुरुदेव जी या आचार्य आदि सभी लोग हमें किसका स्वभाव बताते हैं? ये परमात्मा स्वभाव ही अपने भगवान आत्मा का, क्योंकि तुझे परमात्मा बनना है तो परमात्मा स्वभावी तत्व के पास पहुंचना पड़ेगा। परमात्मा होना है और पहुंचते कहां? बाज झड़ के पास पहुंचते हैं, इससे आगे कहां पहुंचते हैं? पामर ऐसे पुण्य के पास पहुंचते। होना क्या है? परमात्मा। और पहुंचते किसके पास? जड़ में, जिसमें कोई चेतनपना ही नहीं है, तो फिर परमात्मा की तो बात कहां रही। और उससे आगे कहां पहुंचते हैं? सुबह सुबह भाव जो पामर है, इसमें कोई परमात्मा तत्व नहीं है। तो परमात्मा बनना है तो परमात्मा स्वभावी अपने निज भगवान आत्मा के पास। तो ये निज परमात्मा स्वभाव का आश्रय करना है, अवलंबन लेना है, आधार लेना है, तो उसे रजकण, रजकण माने पूरा पुद्गल आदि अजीव द्रव्य आ गया, पूरा जड़ द्रव्य से भेदना। इसमें ऐसे नहीं समझता कोई रजकण कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, और कोई रजकण बुरे होते हैं। दुर्गंध वाले रजकण कैसे होते हैं? बुरे होते हैं ना? नहीं, बुरे ही होते हैं ना? नहीं तो मस्त रुमाल ना के रखिए, से दूर भाग जाते, दुर्गंध आती है। तो हमारे मोह भाव ने नई भावों में भेद कर लिया है। पूरा विश्व समान रूप से ज्ञान का ज्ञेय होने पर भी मोह भाव में इस एक में इष्टपने की कल्पना की, एक में अनिष्टपने की, एक में अनुकूलता की, एक में प्रतिकूलता। बोल तो लेते हैं अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह सच्ची मन की वृत्ति है, झूठी है। ये तो पूजन करने के समय बात जाए तो फिर करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बुरा लगता है तो खाना पीना, कभी जितने शब्द बोलते हैं ना, इस प्रकार की भावना नहीं करते। पूजन में तो बोल लेते हैं, रट लेते हैं, स्वाध्याय में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उस रूप पणती कभी हमने की नहीं। पुण्य से योग मिलता है और पुरुषार्थ से प्रणमन होता है। हम पुण्य से योग मिल गया और हम संतुष्ट मान ले, मेरा कार्य पूरा हो गया, योग मिला है एक कार्य ने। जैसे किसी को अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिया, ये क्या मिला है? योग मिला है, मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी। डज इट नेसेसरी अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन दिया वो अभी एक्सपर्ट होकर ही निकलेगा? स्वयं का क्या करना है? ऐसे हमें झिनवाणी सुनने की मिलती है, गुरुवाणी सुनने को मिलती है, लेकिन वो क्या है? एक योग है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। तो यदि ये आत्म स्वभाव का आशय करना है तो प्रथम रजकण को और साथ में राग के अंश को, दूसरे शब्दों में क्या कहे, कोई भी राग माने कोई भी विभाव भाव और उसका विषय, दोनों से भेदनान करना पड़ेगा। रंग राग भेद से आता है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भीमे भिन्न, तो ये सबसे भेदनान करना ही पड़ेगा, तो ही बहिर्मुखता से वृत्ति अपने परमात्म स्वभाव की ओर ढलेगी। दिशा बदलनी है, दिशा बदलेंगे तो दशा बदलेगी। किस ओर की दिशा है हमारी वृत्ति की, प्रणति की? बहिर्मुखता में है, बाह्य में है, वही दिशा बदलनी है। दिशा बदलनी माने क्या है? अंतर्मुखता में, स्व तरफ की दिशा में जाएंगे तो जो दशा अशुद्ध रूपे है, बंध मार्ग पे है, वही दशा अपनी शुद्ध रूप होके मोक्ष मार्ग की बने। दिशा का पलटा, दशा का पलटा। तो यहाँ एक गुरुदेव से कहते हैं, राग अंश को भी छोड़ देना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा ना, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा ना, क्या करे, शास्त्र में लिखा है इसलिए हम करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, केवली ने दिखा है इसलिए हमें करना पड़ता है ना, ये तो सही बात है ना। केवड़ी एमना ज्ञान में जो एट करव पड़ते, आप बीजु न कर सकिए, आप बीजो ऑप्शन ज नहीं अपनी पास। केवड़ीए आप उनके ज्ञान में देखा है हमारी भावी पर, ऐसा ही हमें प्रणमन करना पड़ेगा ना, ऐसे जबरदस्ती है ऐसे। केवड़ी ने देखा है, वो इससे विपरीत हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो हमें तो जबरदस्ती आ गई, हमारी पराधीनता आ गई। सही मायने में केवली ने देखा है इसलिए प्रणमन होगा कि प्रणमन होने वाला था इसलिए केवली ने देखा है? प्रारंभ वहां से नहीं होता है, हमारा ये प्रणमन होने वाला है। और ऐसा ही उसी काल में पुरुषार्थ सभी केवली ने देखा है कि हमारा प्रणमन होने वाला है, ऐसा केवली ने देखा है और ऐसा हमारा प्रणमन होता है। ऐसा कभी मत मानना कि हम केवली के क्या है पराधी, नहीं उसने देखा ही नहीं, हमारा प्रणमन। तो कोई कहे तो अच्छी बात है, प्रणमन सभी फिक्स है तो हम तो पाप के परिणाम करेंगे क्योंकि हमारा फिक्स है ना, तो मना तो नहीं कर सकते ना। अगले परिणाम में हमारा पाप का परिणाम है तो हम उसको बदला नहीं कर सकते, अच्छी बात है। तुम्हारे भविष्य का, तेरे परिणाम का तुझे ज्ञान हो गया ना, इसलिए तू पाप करता है ना, तो जेने लॉजिक तो नहीं आए तुमने कि मारा भविष्य ना परिणाम में शू लिखु पाप ना परिणाम, एटला माटे हूँ शू करू छू पाप। एनाथी आगर थोड़ोक विचार जे, तारा भविष्य ना परिणाम में नरक पण छे, त्यारे कम्प्लेन नहीं करतो। यदि तू मानता है कि मेरी भावी पर्याय में क्या लिखा है पाप, इसलिए पाप करता हूं, तो उसका फल में क्या आने वाला है? नरक भी आने वाला है। स्वच्छता मत करना, हमें भावी पर्याय का पता नहीं है। और यदि हम केवली के आधार पर मान लेते हैं तो केवली ज्ञान, केवल एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को जो स्वीकारे वो अपने ज्ञान स्वभाव तक पहुंचता है, और ज्ञान स्वभाव तक पहुंचने वाले में उनके अकर्ता ज्ञाता की वितरागता प्रकट होगी, कसाई के परिणाम नहीं होंगे। ये बात की बात नहीं है, ये एक क्रमबद्ध का या तो केवली ने देखा ऐसा होगा, ये सिद्धांत स्वीकारने वाले की दृष्टि कसाई की ओर होगी, अपने स्वभाव की ओर होगी। तो यहाँ कि ये राग का अंश को भी छोड़ देना पड़ेगा, इसमें मेरे पने का अभिप्राय छोड़ दिया इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। पहले क्या हुआ, क्या छूट गया, क्या छूट गया? एक क्षेत्र होगा संयोग रचकण का छूट गया या राग छूट गया? दोनों में से कुछ छूटा नहीं, एकत्व छूटा। प्रथम देखें मेरे पने का अभिप्राय, ममत्व के, एकत्व के, स्वामित्व के, सभी इसमें आ जाता है। इसमें 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 माने किसमें? रजकण और राग में प्रथम क्या छूटता है? मेरे पने का अभिप्राय। अभिप्राय माने क्या? श्रद्धा। सर्वप्रथम सर्व प्रारंभ किससे होता है? जैसे आराधना के दिन में, आज कौन सा दिन है, 10 लक्षण की अपेक्षा से सोचे तो आकिंचन, उत्तम आकिंचन, और रत्नत्रय पर्व जो आज प्रारंभ हुआ इस अपेक्षा से आज कौन सा है? सम्यक दर्शन आराधना का दिन है। तो उसमें सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक सही समीचीन, और दर्शन माने श्रद्धा अभिप्राय। अभिप्राय का प्रथम मिथ्या में से सम्यक पलटा होना है, यही मोक्ष मार्ग की प्रारंभ दशा है। अभिप्राय पलटे बिना चारित्र में शुद्धता होने वाली नहीं है। तो यहाँ इसमें रागादि भावों में मेरे पने का अभिप्राय छोड़ दिया, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। फिर से त्याग किसने किया है? मिथ्या दृष्टि ने किया है, सम्यक दृष्टि ने किया है, मुनिराज ने किया। त्याग ने किसने किया है? त्याग धर्म आता है ना दस में से, त्याग किसने किया? मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा ने किया है, साधक आत्मा में सम्यक दृष्टि ने किया है, मुनिराज ने किसने किया? सभी ने किया। क्या है? हमने पूरा आत्मा को त्याग कर दिया, स्वीकारते ही नहीं है। और सामने ज्ञानी ने क्या किया? पूरे विश्व से अपने पने का अभिप्राय छोड़ा। और मुनिराज ने ग्रस्त दशा संबंधी परिग्रह और विकल्प का भी त्याग किया। त्याग तो किया ही हमने, लेकिन जिसका करने योग्य था उसका हमने ग्रहण किया, और जिसको ग्रहण करने योग्य था उसको क्या किया? त्याग माने स्वीकारा ही नहीं है। तो यहां प्रथम मेरे पने का, फिर से शब्द क्या है? मेरे पने का नहीं, मसू लिख से नहीं, मेरा पना पहला अपनत्व का अभिप्राय। फिर से उसका अर्थ क्या है? अपनत्व का अभिप्राय, अपना हुआ नहीं है, अभिप्राय मात्र है। हम मानते हैं, हो जाता नहीं है। परद्रव्य को अपना हम अपनत्व अपनापना मानते हैं, अपना हो जाते नहीं है, छोड़ देना। फिर ऐसा होने पर भी अपनत्व छोड़ा, फिर भी ऐसा स्वभाव आता है, फिर छता, फिर भी सुले कुछ, फिर भी ऐसे ऐसे माने भूमिका के योग्य। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के योग, श्रावक दशा में अभी जैसे आया था 12 प्रकार के अणुव्रत के विकल्प, मुनि दशा में 28 मुनगुण के विकल्प, ये शुभ आते हैं। लेकिन आते हुए वो जानने लायक है, करने योग कर्तव्य नहीं है। यदि करने योग कर्तव्य मानेंगे तो उसका अभाव नहीं कर पाएंगे। जानने लायक है, उस भूमिका में ऐसा ही राग होता है, इससे हीन प्रकार का नहीं होता। जैसे कोई ने किसी ने मुनि दशा ग्रहण की तो उस भूमिका में 3 कसाई के अभाव हुआ, लेकिन कोई के मुझे ग्रस्त दशा के विकल्प आते हैं तो क्या करूं? संभव ही नहीं है। ऐसा सहज योगानुयोग है कि जहां 3 कसाय का अभाव हुआ तो ग्रस्त दशा संबंधी सभी विकल्प आना और छोड़ना नहीं, आते ही नहीं है। फर्क ऐसा है, आते हो और छोड़ना ऐसा नहीं, आते ही नहीं। तो ये सब ऐसे ग्रस्त दशा के नहीं आते, लेकिन मुनि के योग्य 28 मुर्गुण के विकल्प, पंच महाव्रत, 5 समिति, वो सब कैसे है? जानने लायक है, उस भूमिका में ऐसा है, इसे जानने लायक। और उसको ही समय सार की 12वीं गाथा में क्या दिया है? उस काल में जाना हुआ प्रयोजनवान है, शब्द है। परद्रव्य कैसा है? जाना हुआ प्रयोजन है या करने योग्य प्रयोजनवान है? परद्रव्य क्या है? करने योग्य तो परद्रव्य है ही नहीं, मात्र कैसा है? जानने। ऐसे आगे शुभ राग करने योग प्रयोजनवान है या जानने योग प्रयोजन? करने योग प्रयोजनवान नहीं है। क्यों नहीं? कभी भी जिसका फल में आकुलता हो वो कभी करने योग नहीं होता। फिर से जिसमें क्षेत्र भिन्नता है वो कभी अपने मानने योग्य नहीं है, और जिसका करने से आकुलता का वेदन हो वो कभी करने योग्य नहीं है। तो जो उस भूमिका के योग शुभ राग है वो उसके फल में क्या मिलता है, आकुलता ही मिलती है। तो जिसके फल में आकुलता वो कभी करने योग्य नहीं होते है, अने होते है तो जानने योग्य है, लेकिन कभी भी आश्रो भाव विभाव भाव अशुद्ध भाव वो करने योग्य नहीं है। तो बारहवीं गाथा में देखिए, ग्यारहवीं और बारहवीं गाथा जिन समय सार में है दोनों का क्या है, एक दूसरे का सुमेल है। जैसे छठी गाथा और सातवीं गाथा में क्या दोनों का संबंध है, छठी गाथा में क्या बताया हमें, छठी गाथा प्रश्न था ना, ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, तो उसके उत्तर रूप छठी और सातवीं दोनों गाथा है। छठी गाथा में क्या बताया, पर्याय भेद से रहित अपना शुद्धात्मा एक ज्ञायक भाव दिखा, और वही ज्ञायक भाव को सातवीं गाथा में गुण भेद से रहित बताया। बात तो एक ही है, किसके ये? एक ज्ञायक, एक पने में क्या होता है, खंड होता है या भेद होता है, एक पन्ने में क्या होता है, भेद होता है या खंड होता है। अरे भेद होगा तो एक पन्ना कहां रहा, तो एक पन्ने में भेद होता नहीं है। तो भेद कौन से है, पर्याय भेद भी है, गुण भेद है, परद्रव्य कैसे है, भेद रूप है, वे भिन्न रूप है, परद्रव्य कैसे है, भिन्न रूप है, और पर्याय भेद रूप, और गुण भी क्योंकि अनंत गुण है ना, तो गुण का भी भेद, तो ये भिन्न जो है वो तो नहीं है, लेकिन पर्याय भेद भी मेरे में नहीं है छठवीं गाथा, और गुण भेद भी मेरे में ज्ञायक भाव में नहीं, इसके लिए सातवीं गाथा। ऐसे ही ग्यारहवीं गाथा इसमें क्या किया, व्यवहार नहीं अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नहीं, तो व्यवहार व्यवहार के विषय सुब्रा का उसमें क्या किया, निषेध किया। तो बारहवीं गाथा में बताया कि आश्रय करने के लिए उनका निषेध है, लेकिन साधक की भूमिका में उनके योग्य व्यवहार के सुभराग आता है, वे जानने योग्य है। फर्क दिखाणो का अग्यारहवीं ने बारहवीं गाथा में, सु फर्क दिखाणो, अग्यारहवीं गाथा में सु निषेध करो, व्यवहार केवो छे अभूतार्थ छे, अभूतार्थ એટલે હોય જ નહીં, નહીં કાંઈ હોય જ નહીં ગમે નહીં તો એવું નથી, એ છે પણ આશ્રય કરવા યોગ્ય નથી। અને પછી તો બારમી ગાથામાં કે સાધક દશામાં વ્યવહાર નિશ્ચય કહાં હોતે હૈ, બહિરાત્માપને મેં અંતરાત્માપને મેં યા પરમાત્મા કો, પરમાત્મા કો હોતા હૈ ના નિશ્ચય, પરમાત્મા કો અકેલા નિશ્ચય હોતા હૈ, और हम बहिरात्मा को अकेला व्यवहार होता है, नहीं हमारे पास व्यवहार तो है ना, कम से कम निश्चय नहीं है लेकिन व्यवहार तो है कि नहीं, नहीं पूजा भक्ति आदि सभी जैसे श्रावक का गुण है ऐसे करते ही कि नहीं, जितनी मर्यादा में हो सके करते ही कि नहीं, तो हमारे पास क्या है, व्यवहार तो आ गए, आधा तो काम हो गए, अभी क्या प्राप्त करना है, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। जिस डिब्बे के अंदर हीरा नहीं है उसको हीरे की डिब्बी कैसे कहेंगे। देखिए सब ये तत्व ज्ञान के अभ्यास गुरुदेव से बहुत न्याय से सब सिद्ध करते हैं, तत्व सिखाते हैं और न्याय भी समझाते हैं। अनुपचार ऐसे निश्चय के बिना उपचार कहां करेंगे आप, जिसके कोई संतान ही नहीं उस व्यक्ति को आप पिता कहेंगे क्या। तो ये व्यवहार का भी प्रयोग कभी होगा, सही निश्चय है तो व्यवहार का, यदि निश्चय ही नहीं है हीरा ही नहीं है तो हीरे की डब्बी ऐसा शब्द प्रयोग भी किया नहीं जाता। यहाँ तो बारहवीं गाथा में कहा कि इस भूमिका में साधक आत्मा को जिस भूमिका में जैसा व्यवहार है वो व्यवहार को उस काल जाना हुआ प्रयोजनवान। शब्द क्या ले, उस काल शब्द क्यों दिया, उस काल क्यों पर्टिकुलर उस काल ही शब्द क्यों प्रयोग किया, क्योंकि राग पलटता रहता है, चौथे गुण स्थान में देव शास्त्र गुरु के संबंधी श्रद्धा का राग, पंचम गुण स्थान आया तो अणुव्रत का राग, और मुनि दशा आई तो छठे गुण स्थान में महाव्रत आदि। तो फर्क हुआ वे। तो इस प्रकार उस काल में जिस जिस भूमिका में उस काल में ये व्यवहार वो कैसा है, करने योग्य नहीं है, आदरने योग्य नहीं है, जानने के लिए प्रयोजनवान है। ये बड़ा विस्तार से गुरुदेव जी ने ये पूरा विस्तार लिया कि प्रतिमा है प्रतिमा नहीं है ऐसा नहीं है। तो साधक आत्मा को भी अपने चारित्र के पुरुषार्थ की कमी है, तो जिनेन्द्र देव उनकी प्रतिमा के प्रति भक्ति आदि का भाव आता है, लेकिन वे उसको उपाधि मानते नहीं है। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की अपूर्णता है तो आए बिना रहता नहीं, उसको जाना हुआ प्रयोजन मान करने में आता है। इसके आगे 47 नंबर का बोल है, उस पर आते हैं। क्रोधादि होने के काल में कोई भी जीव अपनी हयाति बिना एक क्रोधादि है ऐसा जान सकते ही नहीं। ये बनारसी दास जी ने जीव के लक्षण में एक पद रचा है, समता रमता ऊर्ध्वता। समता, समता माने क्या? सबको समान मानना, सबको समान नहीं मानना, सबको समान मानना, कुदेव को भी समान और देव को नहीं। यहां तो लिखा है समता शब्द लिखा है, नहीं सबको सग्रंथ हो निर्ग्रंथ सबको समान मानना, नहीं तो समता कार्य क्या करेंगे? अरे कुदेव को देव मानना वो तो मिथ्यात्व है, आया था ना, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कुदेव ने देव माने, कुधर्म ने धर्म माने, सग्रंथ ने निर्ग्रंथ माने, अतत्व ने तत्व माने, इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। और मिथ्यात्व के कितने भेद है? मिथ्यात्व के पहले दो भेद है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित। शुभ भाव कौन से मिथ्यात्व में आए, ग्रहित मिथ्यात्व में या अग्रहित मिथ्यात्व? शुभ भाव किस में आएगा, ग्रहित में आएगा या अग्रहित में? जोर से बनने में शुभ भाव बेई में आवे, ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित बेई में आवे? शुभ भाव पूछू छो, बनने में शुभ भाव ग्रहित मिथ्यात्व में आवे अग्रहित में आवे? नहीं डाउट तो नहीं, आ चोखू कहवानु पछी आ सारू आम मोढ़ू बे रीते फेरव एटले हाय कहवाय नाय कहवाय। फिर से गुरुदेव जी के प्रवचन में आए थे आज, आज या कल, शुभ राग वो मिथ्यात्व नहीं है, शुभ राग में धर्म मानना मिथ्यात्व है। शुभ राग तो चारित्र संबंधी है, अभी तक इतना क्या, इसमें अपनापने का अभिप्राय वो मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व में ग्रहित और अग्रहित, और ऐसा अभिप्राय तो निरंतर हम चलते हैं। वो ग्रहित मिथ्यात्व के पांच प्रकार दिए थे, एकांतिक विपरीत अज्ञान ये सभी। यहाँ फिर से एक बहुत अच्छा गुरुदेव जी का एक बहुत अच्छा बोले, जो बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में, मेरा स्वभाव क्या है, न किसी के प्रति राग न किसी के प्रति द्वेष, उसका नाम सब सबको समान जानना वो तो वैनिक मिथ्यात्व है। हिताहित का विवेक नहीं रहा, हिंसा में भी धर्म मानना अहिंसा में धर्म वो तो विवेकहीनता है, वो समता नहीं है, वो अज्ञानता है, विवेकहीनता है। यहाँ तो सही में मैं वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानना, लेकिन किसी के प्रति न राग न किसी के प्रति द्वेष, ऐसी वितरागता को ही समता कहने में आता है। और जहां समता का परिणमन हो वही सामायिक कहने में आती है, आता है ना सामायिक, स्थायी सामायिक भाग्यू से। तो जहां समता का लाभ उसका नाम सामायिक है, एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या सामायिक की, समय में परिणमन उसका नाम सामायिक, समय माने आत्मा, समय के अलग अलग अर्थ होते हैं, समय का टाइम भी अर्थ होता है ना, समय माने एक अभिप्राय ऐसा भी अर्थ होता है, और समय माने अर्थ समय पदार्थ, और पदार्थ में भी आत्मा। तो समय सार की दूसरी गाथा में इसलिए ना स्व समय और पर समय, तो समय का अर्थ आत्मा भी होता है, फिर तीसरी गाथा में समय का अर्थ सभी पदार्थ भी लिया। तो यहां फिर से समता जीव का एक क्या है, एक गुण है, लक्षण है, वितरागता उसका, फिर समता रमता, रमता माने रमणता, कहीं न कहीं पणती रमण करती माने कुछ न कुछ अपनत्व करती मानती है, ये रमणता उपयोग की स्थिरता चारित्र वो भी जीव का एक क्या है, स्वभाव है। ऐसा है ना, पणती कभी न कभी कोई न कोई इसी विषय का तो अवलंबन लेती है, चाहे सो स्वभाव का ले चाहे सो पर में सुख बुद्धि करके, तो रमणता करना वो भी एक जीव का क्या है, स्वभाव है, जड़ में ऐसा नहीं है। और तीसरा क्या है, ऊर्ध्वता, ऊर्ध्वता माने मुख्यपना, ज्ञान स्वभाव की मुख्यता के बिना। देखिए यहाँ दृष्टांत देखिए, एक क्रोधादि है, किसी ने सुखे भाई नक्की कौन कह रो, किसने पका किया, क्या बोलेंगे आप हिंदी, ये ऐसा एक क्रोध भाव हम बोलते हैं ना, मुझे क्रोध हुआ, एक किस किसने स्वीकारा, क्रोध ने क्रोध का स्वीकार किया, तो किसने किया, एक ज्ञानमय भाव में एक क्रोध हुआ ऐसा स्वीकार हुआ। ज्ञान के बिना जानने वाला कौन है, गुजराती में बिजरी ते शब्द सुख है, बदानो खबरदार कौन से, खबरदार माने समझते है? सबको जानने वाला कौन है, राग को जानता है, जड़ जड़ को जानता है, कि राग हो या जड़ हो सबके जानने वाला कौन है, ज्ञानमय भगवान आत्मा है। तो हर समय उनकी ही मुख्यता रहती है, जब भी ऐसे लगे कि मुझे क्रोध आया, किसकी प्रसिद्धि होती है, क्रोध को है लेकिन क्रोध को जानने वाला ज्ञान की भी प्रसिद्धि है। ये मकान है तो मकान में प्रसिद्धि, मकान ने मकान की है कि ये मकान है ऐसा प्रसिद्ध करने वाला कौन है, ज्ञान। इसे हर समय यदि ज्ञान की ही मुख्यता रखेंगे तो परद्रव्य से हमारी वृत्ति स्वभाव की ओर, ज्ञाय की ओर ढलेगी, और उसका नाम ही यथार्थ मोक्ष मार्ग, यथार्थ आत्मा की आराधना उपासना की कहने में आए।
जे मुख्य भाई बहनों लाइफ मेंबर थोड़े हैं तेरा फॉर्म दिल्ली बे पास से सवारे मिल भी अने पची भरा भी दे अपने अपने मेंबर बनाओ ना चालू करवाना चाहिए। श्री चंद्रकांत भाई वादर 2 मिनट मार्टे अपने मंत्र वेल जोगर से।